मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 26 अक्टूबर 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बड़े एक दिलचस्प विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं और यह दिलचस्प विषय इस मामले को लेकर है कि देखिए, हम सबके पास लगभग लगभग एक जैसी ही चीजें हुआ करती हैं। सामान्यतः जो जरूरत की चीजें होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके का फर्क हमारी जिंदगियों में आने लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि बांस आप समझते हैं, जिसे आप बैम्बू कहते हैं। अब बांस है, बांस से बहुत सी सारी चीजें चलिए बनाई जा सकती हैं, आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं केवल दो चीजों के नाम ले रहा हूं जो शायद मेरी बात को स्पष्ट करने के लिए ज्यादा प्रभावी वस्तुएं होंगी। उसमें से एक यह है कि आप बांस से बांसुरी बना सकते हैं। देख रहे हैं, बांसुरी जो बांस से बनी है वो बांसुरी, यानी कि जब बांस में आपने सुर का समावेश कर दिया तो क्या बन गई? बांसुरी। अब आप देखिए कि बांस जैसी रूखी सूखी चीज, कोई बहुत महंगी लकड़ी भी नहीं है, बांस मेरी समझ से शायद सबसे सस्ती लकड़ियों में आती होगी, ऐसे कहीं भी झुंड के झुंड बांस उग जाया करते हैं, लेकिन जब आप उसे बांसुरी में कन्वर्ट करते हैं तो वही बांस क्या से क्या बन जाती है। बांसुरी होते ही वह चीज कितनी मूल्यवान हो जाती है, सबको कितनी प्रिय लगने लगती है। और दूसरा है, बांस से ही आप लाठी बना सकते हैं, डंडा जिसको कहते हैं। डंडा तो नहीं कहना चाहिए, डंडा थोड़ा सा मोटा होता है, लाठी शब्द उसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है। लाठी बना सकते हैं। बांसुरी से आप किसी के हृदय को रिझा सकते हैं, मन को खुश कर सकते हैं, लेकिन डंडे से तो ज्यादातर किसी न किसी को आप मारते ही हैं। अगर अपनी रक्षा भी करनी है तो किसी न किसी को मार करके ही रक्षा करनी है। मोहल्ले में जा रहे हैं, कुत्ता भौंकने लगा, लाठी हाथ में है तो आप कुत्ते को मारेंगे ही मारेंगे, तो एक का दिल दुखेगा लेकिन आपकी रक्षा हो जाएगी। तो लाठी से आप किसी को खुश नहीं कर सकते, हैं दोनों बांस ही। इसे ही मैंने कहा कि वस्तुएं हम सबके पास होती हैं, अब सवाल यह है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इन्हीं से सारा फर्क जीवन में आ जाता है। मित्रों, ये तो मैंने वस्तु के बारे में बात कही और वस्तु के बारे में ही एक बड़ी इस तरह की खूबसूरत बात लड़कियों के संदर्भ में या कह लीजिए कि महिलाओं के संदर्भ में हमारे शायर मजाज लखनवी साहब ने कही है और ये बड़ी खूबसूरत दो लाइनें हैं। चूंकि आज शुक्रवार है और थोड़ा सा शेर व शायरी का भी दिन हुआ करता है शुक्रवार का, ताकि शनिवार इतवार के जो आपके छुट्टी के दिन हैं वो बड़े अच्छे से कटें और जब शेर व शायरी की कोई धुन कह लीजिए या कोई शब्द हमारे दिमाग में कौंधने लगती हैं, लगातार आने जाने लगते हैं, तो वो जो छुट्टी के दिन हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में कट भी जाते हैं। तो इसे सुने, उन्होंने लिखा है मजाज लखनवी साहब ने कि तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम का मतलब होता है, वैसे आप कह सकते हैं कपड़े का टुकड़ा, लेकिन सामान्यतया आपने इसका इस्तेमाल इस रूप में करते हुए सुना होगा कि साहब, भारत ने तो बिल्कुल वहां अपना परचम लहरा दिया। परचम लहरा दिया का मतलब झंडा लहरा दिया, राइट? हम उसे तिरंगा नाम देते हैं, हम अपने झंडे को तिरंगा झंडा कहते हैं, वैसे हुआ फ्लैग, झंडा लहरा दिया, यानी कि वह हमारे लिए आन बान शान का एक आधार बन गया। तो वही वो यहां देखिए कि क्या बात कर रही है और ये भारतीय जो महिलाएं हैं, नारियां हैं या लड़कियां हैं, उनके लिए कहा गया और इसे आप पूरे के पूरे विश्व संदर्भ में भी लागू कर सकते हैं। सिर पर आंचल है, तो आंचल क्या है? सिर को ढकने के काम आ रहा है या लज्जा के काम आ रहा है, जिसमें एक तरह की कोमलता विद्यमान है, लज्जा का भाव विद्यमान है, संकोच विद्यमान है, कुल मिलाकर के ये कि उसमें ये बात नहीं है कि आप जाकर के कुछ करें, यानी कि अपनी सामाजिक भूमिका निभाएं। आंचल का मतलब ही है कि आपकी अपनी सीमाएं हैं और वह सीमा आपकी आपका घर है, आपका लज्जा है, लज्जा ही आपका सौंदर्य है, वही आपका सर्वोत्तम गुण है। तो आप अपने सिर को आंचल से ढक कर रखें। उन्होंने आंचल शब्द का प्रयोग किया है। वैसे सिर को ढकने के लिए आप देखते हैं कि कुछ घूंघट शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही मायने में यह होता है कि आंचल को जब आप सिर के आगे झुका करके मुख पर ले आते हैं तो वही फिर घूंघट बन जाता है। तो मुख पर जो पड़ा हुआ हिस्सा है, जो मुख को ढके हुए है, उसे फिर हम घूंघट कहते हैं। तो है, तो यहां कन्फ्यूजन उस तरह से अपने अंदर मत पैदा कीजिएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि उसी कपड़े के टुकड़े को झंडा भी तो बनाया जा सकता है। झंडा का मतलब क्या हुआ? कर्म से भी तो जोड़ा जा सकता है, अपने आत्म सम्मान का भी उसे अंग बनाया जा सकता है, आधार बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के वो बात ये कह रहे हैं कि ठीक है, लज्जा अच्छी बात है, सौंदर्य अच्छी बात है, संकोच अच्छी बात है, लेकिन क्या सच में ये बेहतर नहीं होता, इससे भी ज्यादा बेहतर नहीं होता कि तुम इसी लज्जा और संकोच के साथ आकर के कर्म भूमि में अपना दायित्व निभाओ, लोगों के साथ काम करो, अपनी जो एक सामाजिक भूमिका है उसका निर्वाह करो, यानी कि कुछ करो, स्वावलंबी बनो। ये मित्रों सच पूछे तो ये उस दौर की भाषा है, या कह लीजिए उस दौर का भाव है, उस दौर के विचार हैं। जबकि साहित्य में 1935 के बाद एक प्रकार से प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रवेश करने लगा था कि नहीं, महिलाएं भी पुरुषों के समान हैं और उन्हें भी सामाजिक कामों में भाग लेना चाहिए। और आपने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने महिलाओं को एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ बना दिया था। उसी संदर्भ में ये बात कही गई है कि आंचल ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा ठीक है कि उसे परचम में तब्दील कर दिया जाए। तब आप देखिए कि कैसे वही वस्तु है, लेकिन उस वस्तु के किस तरीके के इस्तेमाल किए जाने की बात यहां लखनवी साहब कह रहे हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक अलग तरह के भाव वाली मैं आप वाली कविता आपको सुना रहा हूं। यह भी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन मुझे ये कविता बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत लवली, बहुत ही छू लेने वाली कविता है। लेकिन है ये बहुत छोटी, और शायद मुझे लगता है कि छोटी में ही सबसे ज्यादा ताकत भी होती है। और इसे लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं, केदारनाथ सिंह। अब वो देखिए कि क्या कह रहे हैं। यहां भी आपको प्रेम मिलेगा, यहां भी आपको कोमलता मिलेगी, यहां भी आपको नारी मिलेगी, नारी पुरुष यहां दोनों मिलेंगे, प्रेम और प्रेम प्रेम प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही मिलेंगे। लेकिन भाव देखिए इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से अब एक बदलाव की बात की जा रही है, या कह लीजिए कि हमारे भाव जो बड़े संकुचित हो गए हैं, बड़े ही संकीर्ण हो गए हैं, उन्हें विस्तार देने की बात कही जा रही है। राइट, पहले कविताओं की ये लाइनें तो सुन लीजिए और इसे समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। उसका हाथ, नई कविता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, उसका हाथ, अब समझ लीजिए कि किसका हाथ, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। मित्र, छू लेने वाली बात है। आप देखिए, बस वो यूं कह लीजिए कि जब आप किसी भी कविता को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने का अंदाज, उसके अंदर घुस जाने का भाव, गहरे उतर जाने की ताकत, बस यही सारी चीजें तो कविता का आस्वाद दिलाती है और समझ भी पैदा करती है। अब आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कैसे प्रेम के भाव का बिल्कुल विस्तार करते हुए उन्होंने किस रूप में फैला दिया है कि जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए, उसमें गर्मी होनी चाहिए, उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, कुछ करने का भाव होना चाहिए, कुछ पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, उद्दाम लालसा होनी चाहिए, और ये जो दुनिया है सुंदर होनी चाहिए। दुनिया को सुंदर बनाने के लिए इस प्रेम का उपयोग किया जाना चाहिए। और उस प्रेम का उपयोग दुनिया को सुंदर बनाने के लिए आप करेंगे कैसे, ऊर्जा के माध्यम से। तो वो कहना क्या चाह रहा है कवि कि आओ तुम और मैं मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम कर उसकी जो गर्मी है, प्रेम की जो ताकत है, उसे महसूस करें और उस ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए करें। यह है मित्रों प्रेम की सच्ची शक्ति, और सच पूछिए तो प्रेम का सच्चा उपयोग भी। तो दोस्तों आप दो दिन की अब छुट्टी है, सोमवार को फिर मुलाकात होगी और मैं चाहूंगा कि इस बीच में आप ये जो दोनों एक कविता और एक शेर आपने सुना है इसे मन ही मन दोहराते रहें, उसका स्वाद लेते रहें, अपने ढंग से इसका विश्लेषण करते रहें और बेहतर होगा कि कोशिश करें कि कभी न कभी इसका अपने तरीके से उपयोग भी कर सके। तो मित्रों अब इसी के साथ ही मैं दो दिनों के लिए आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।